معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے کتاب چٹانوں میں فائر. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز اسرا سرور، پیشکش محمد اظہر، مصنف ابن صفی. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں، ٹیلی فون نمبر 03002919600. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. کرنل زرغام بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا. یہ ایک ادھیڑ عمر کا قوی الحبشی اور پرروب چہرے والا آدمی تھا. مونچھیں گھنی اور نیچے کی طرف ڈھلکی ہوئی تھی. بار بار اپنے شانوں کو اس طرح جنبش دیتا تھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ اس کا کوٹ شانوں سے ڈھلک کر نیچے آ جائے گا. یہ اس کی بہت پرانی عادت تھی. وہ کم از کم ہر دو منٹ کے بعد اپنے شانوں کو اس طرح ضرور جنبش دیتا تھا. اس نے دیوار پر لگے ہوئے کلاک پر تشویش آمیز نظریں ڈالی اور پھر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا. تیسرے ہفتے کا چاند دور کی پہاڑیوں کے پیچھے سے ابھر رہا تھا. موسم بھی خوشگوار تھا اور منظر بھی انتہائی دلکش. مگر کرنل زرغام کا اضطراب، وہ ان دونوں میں سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا. اچانک وہ کسی آہٹ پر چونک کر مڑا. دروازے میں اس کی جوان العمر لڑکی صوفیہ کھڑی تھی. او ڈیڈی، 10 بج گئے لیکن. ہاں ہاں، زرغام کچھ سوچتا ہوا بولا، شاید گاڑی لیٹ ہے. وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا. صوفیہ آگے بڑھی اور اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن کرنل زرغام بستور باہر ہی دیکھتا رہا. آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ صوفیہ آہستہ سے بولی. اوف ہو، کرنل زرغام مڑ کر بولا، میں کہتا ہوں کہ آخر تمہاری نظروں میں ان واقعات کی کوئی اہمیت کیوں نہیں؟ میں نے یہ کبھی نہیں کہا، صوفیہ بولی. میرا مطلب تو صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ تشویش کر کے ذہن کو تھکانے سے کیا فائدہ. اب میں ایسے کیا کروں کہ ہر لہجہ میری الجھنوں میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے. کیا کوئی نئی بات؟ صوفیہ کے لہجے میں تجر تھا. کیا تم نے کیپٹن فیاض کا تار نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے، اور میں اس وقت اسی کے متعلق گفتگو کرنے آئی ہوں. تو تم بھی اس کی وجہ سے الجھن میں مبتلا ہو گئی ہو؟ جی ہاں. آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے لکھا ہے ایک ایسا آدمی بھیج رہا ہوں جس سے آپ لوگ تنگ نہ آ گئے تو کافی فائدہ اٹھا سکیں گے. میں کہتی ہوں ایسا آدمی ہی کیوں جس سے ہم تنگ آ جائیں، اور پھر وہ کوئی سرکاری آدمی بھی نہیں ہے. بس یہی چیز مجھے بھی الجھن میں ڈالے ہوئے ہے، کرنل نے کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. آخر وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ ہم تنگ کیوں آ جائیں گے؟ انہوں نے اپنی محکمہ کا کوئی آدمی کیوں نہیں بھیجا؟ صوفیہ نے کہا. بھیجنا چاہتا تو بھیج ہی سکتا تھا، لیکن فیاض بڑا باوصول آدمی ہے. ایک پرائیویٹ معاملے کے لیے اسے سرکاری آدمی بھیجنا مناسب نہ سمجھا. کرنل زرغام کے دونوں بھتیجے انوار اور عارف ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی آمد کے منتظر تھے. محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض نے ان کے چچا کی درخواست پر ایک آدمی بھیجا تھا جسے وہ لینے کے لیے اسٹیشن آئے تھے. گاڑی ایک گھنٹہ لیٹ تھی. ان دونوں نے بھی کیپٹن فیاض کا تار دیکھا تھا اور آنے والے کے متعلق سوچ رہے تھے. یہ دونوں جوان خوش شکل، اسمارٹ اور تعلیم یافتہ تھے. انور عارف سے صرف 2 سال بڑا تھا، اس لیے ان میں دوستوں کی بے تکلفی تھی اور عارف انور کو اس کے نام ہی سے مخاطب کرتا تھا. کیپٹن فیاض کا تار کتنا عجیب تھا، عارف نے کہا. اس کا بہت ٹرین کو بھی آج ہی لیٹ ہونا تھا، انور بڑبڑایا. آخر وہ کس قسم کا آدمی ہوگا؟ عارف نے کہا. او نہاد چھوڑو، ہوگا کوئی چڑچڑا بد دماغ، انور بولا. کرنل صاحب خواہ خود بھی بور ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بور کرتے ہیں. یہ تمہاری زیادتی ہے، عارف نے کہا. ان حالات میں تم بھی وہی کرتے رہے ہو. ارے چھوڑو، کہاں کے حالات اور کیسے حالات، سب ان کا دہم ہے. میں اکثر سوچتا ہوں ان جیسے وہمی آدمی کو ایک پوری بٹالین کے کمانڈ کیسے سونپ دی گئی تھی. कोई तक भी है। आखिर घर में बिल्लियां रुएंगी तो खानदान पर कोई ना कोई आफत जरूर आएगी। उल्लू की आवाज सुनकर दुम निकल जाएगा। अगर खाना खाते वक्त किसी ने प्लेट में छुरी और कांटे को क्रॉस करके रख दिया तो बदशगुनी। सुबह ही सुबह अगर कोई ना आदमी दिखाई दे तो क्या मुसीबत। इस मामले में तो मुझे इनसे हमदर्दी है, आरिफ ने कहा। मुझे ताव आता है, अनवर भुना कर बोला। पुराने आदमियों को माफ करना ही पड़ता है। ये पुराने आदमी हैं, अनवर ने झुंझला कर कहा। मुझे तो इसकी बात में पुराना पन नहीं नजर आता, सिवाय ज़ईफ़ुल एतिकादी के। यही सही बहरहाल वो पिछले दौर की ज़रासत है। तेज किस्म की घंटी की आवाज से वो चौंक पड़े। ये ट्रेन की आमद का इशारा था। एक छोटा सा पहाड़ी स्टेशन था, यहाँ मुसाफिरों को होशियार करने के लिए घंटी बजाई जाती थी। पूरे प्लेटफार्म पर 8 या 10 आदमी नजर आ रहे थे। इनमें नीली वर्दी वाले खलासी भी थे, जो इतनी शान से अकड़ अकड़ कर चलते हैं जैसे वो स्टेशन मास्टर से भी कोई बड़ी चीज हो। खाना फरोख करने वाले अपनी जाली लकड़ी का संदूक, जिसके अंदर एक लालटेन जल रही थी, मोंडे से उठाकर कंधे पर रख लिया। और पान बेड़ी सिगरेट बेचने वाले लड़के ने, जो अभी मुंह से तीला बजा बजाकर एक सहज सा गीत गा रहा था, अपने ट्रे उठाकर गर्दन में लटका ली। ट्रेन ऐसा ऐसा रिंगती हुई आकर प्लेटफॉर्म से अलग हो गई। अनवर और आरिफ गेट पर खड़े रहे। पूरी ट्रेन से सिर्फ 3 आदमी उतरे, 2 बूढ़े देहाती और एक जवान आदमी, जिसके जिस्म पर खाकी गाबर्डीन का सूट था। बाएं शाने से निहलाफ में बना कि कोई बंदूक लटक रही थी और दाहिने हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। गालिबन ये वही आदमी था जिसके लिए अनवर और आरिफ यहाँ आए थे। वो दोनों इसकी तरफ बढ़े। क्या आपको कैप्टन फयाज ने भेजा है, अनवर ने इससे पूछा। अगर मैं खुद ही ना आना चाहता तो इसके फरिश्ते भी नहीं भेज सकते थे, मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा। जी हाँ ठीक है, अनवर जल्दी से बोला। क्या ठीक है, मुसाफिर पलके झपकाने लगा। अनवर बौखला गया, यही जो आप कह रहे हैं। ओ, मुसाफिर ने इस तरह कहा जैसे वो पहले कुछ और समझा हो। आरिफ और अनवर ने मनिखेज नजर से एक दूसरे को देखा। हम आपको लेने के लिए आए हैं, आरिफ ने कहा। तो ले चलिए ना, मुसाफिर ने सूटकेस प्लेटफॉर्म पर रखकर इस पर बैठते हुए कहा। अनवर ने कली को आवाज दी। क्या, मुसाफिर ने हैरत से कहा। ये कली मुझे सूटकेस समेत उठा सकेगा? पहले दोनों बौखलाए फिर हंसने लगे। जी नहीं, अनवर ने शरारत आमेज अंदाज में कहा, आप जरा खड़े हो जाएं। मुसाफिर खड़ा हो गया। अनवर ने कली को सूटकेस उठाने का इशारा करते हुए मुसाफिर का हाथ पकड़ लिया। यूं चलिए। लाहौल वाला कुआ था, मुसाफिर गर्दन झटक कर बोला। मैं कुछ और समझा था, अनवर ने आरिफ को मुखातिब करके कहा। गालिबन अब तार का मजमून तुम्हारी समझ में आ गया होगा, आरिफ हंसने लगा। लेकिन मुसाफिर इतनी बेतालुकी और संजीदगी से चलता रहा जैसे इसे इस बात से कोई सरोकार ही ना हो। वो बाहर आकर कार में बैठ गया। पिछली सीट पर अनवर मुसाफिर के साथ और आरिफ कार ड्राइवर कर रहा था। अनवर ने आरिफ को मुखातिब करके कहा, क्या कर्नल साहब और कैप्टन फयाज में कोई मजाक का रिश्ता भी है? आरिफ ने फिर कहका लगाया। वो दोनों ही सोच रहे थे कि इस अहमक मुसाफिर के साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। जनाब का इसमें शरीफ, अचानक अनवर मुसाफिर से मुखातिब हुआ। क्लियर शरीफ, मुसाफिर ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। दोनों हंस पड़े। हाय, इसमें हंसने की क्या बात, मुसाफिर बोला। मैंने आपका नाम पूछा था, अनवर ने कहा। अली इमरान, MSc PhD। MSc PhD भी, आरिफ हंस पड़ा। आप हंसे क्यों, इमरान ने पूछा। ओ, मैं दूसरी बात पर हंसा था, आरिफ जल्दी से बोला। अच्छा, तो आप तीसरी बात पर हंसने की इजाजत दीजिए, इमरान ने कहा और अहमकों की तरह हंसने लगा। वो दोनों और जोर से हंसे। इमरान ने इससे भी तेज कहका लगाया और थोड़ी ही देर बाद अनवर और आरिफ ने महसूस किया जैसे वो खुद भी अहमक हो गए हों। कार पहाड़ी रास्तों में चकराती आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर के लिए खामोशी हो गई। इमरान ने इन दोनों के नाम नहीं पूछे। अनवर सोच रहा था कि खासी तफरी रहेगी, कर्नल साहब की झुंझलाहट काबिले दीद होगी। यह अहमक आदमी और इनका नाता बंद कर देगा और वो पागलों की तरह सर पीटते फिरेंगे। अनमर ठीक ही सोच रहा था, कर्नल था भी झूले मिजाज का आदमी। अगर इसे कोई बात दोबारा दोहरानी पड़ती थी तो इसका पारा चढ़ जाता था। क्या जाएगा इमरान जैसे आदमी का साथ? आधे घंटे में कार ने कर्नल की कोठी तक मुसाफत तय कर ली। कर्नल अब भी बेचैनी से इस कमरे में टहल रहा था और सूर्या भी वहीं मौजूद थी। कर्नल ने इमरान को ऊपर से नीचे तक तनकीदी नजरों से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, कैप्टन फयाज सब अच्छे हैं। अजी तौबा कीजिए, नहायत नामाकूल आदमी है, इमरान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उसने कांधे से बंदूक उतारकर सोफे के हत्थे से लटका दी। क्यों ना माकूल क्यों, कर्नल ने हैरत से कहा। बस यूं ही इमरान संजीदगी से बोला, मेरा ख्याल है कि नामाकूलियत की कोई वजह नहीं होती। खूब कर्नल से घूरने लगा, आपकी तारीफें अजी ही। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ किया करो, इमरान शर्मा कर बोला। अनवर किसी तरह जब्त ना कर सका, इसे हंसी आ गई और इसके फूटते ही आरिफ भी हंसने लगा। ये क्या बदतमीजी, कर्नल की तरफ मुड़ा। दोनों यकबे खामोश होकर बगले झांकने लगे। सूफिया अजीब नजर से इमरान को देख रही थी। मैंने आपका नाम पूछा था, कर्नल ने खनकार कर इमरान से पूछा। कब पूछा था, इमरान चौंक कर बोला। अभी कर्नल के मुंह से बेसाखना निकला और वो दोनों भाई अपने मुंह में रुमाली ठूसते हुए बाहर निकल गए। इन लौंडों की शामत आ गई है, कर्नल ने गुस्सीली आवाज में कहा और वो भी तेजी से कमरे से निकल गया। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे वो इन दोनों को दौड़कर मारेगा। इमरान अहमकों की तरह बैठा रहा, बिल्कुल ऐसे ही बेतकल्लुमाना अंदाज में, जैसे इसने कुछ देखा सुना ही ना हो। इमरान अहमकों की तरह बैठा रहा, बिल्कुल ऐसे ही बेतकल्लुमाना अंदाज में, जैसे इसने कुछ देखा सुना ही ना हो। सूफिया कमरे ही में रह गई थी और इसकी आंखों में शरारत आमेज चमक लहराने लगी थी। आपने अपना नाम नहीं बताया, सूफिया बोली। इस पर इमरान ने अपना नाम डिग्री समेत दोहरा दिया। सूफिया के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसे इस पर यकीन ना आया हो। क्या आपको अपने यहाँ आने का मकसद मालूम है, सूफिया ने पूछा। मकसद, इमरान चौंक कर बोला, जी हाँ मकसद मुझे मालूम है, इसीलिए मैं अपनी एयरगन के साथ लाया हूँ। एयरगन, सूफिया ने हैरत से दोहराया। जी हाँ, इमरान ने संजीदगी से कहा, मैं हाथ से मक्खियाँ नहीं मारता। कर्नल जो पुलिस के दरवाजे में खड़ा इनकी गुफ्तगू सुन रहा था, झुल्ला कर आगे बढ़ा। मैं नहीं समझ सकता कि फयाज ने ये बेवकूफ़ी क्यों की है, इसने सख्त लहजे में कहा और इमरान को खड़ा घूरता रहा। देखिए है ना, नामाकूल आदमी, मैंने तो पहले ही कहा था, इमरान चहक कर बोला। आप कल पहली गाड़ी से वापस जाएंगे, कर्नल ने कहा। नहीं, इमरान ने संजीदगी से कहा, मैं एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर आया हूँ। जी नहीं शुक्रिया, कर्नल बेजारी से बोला, मैं आधा मुआवजा देकर आपको रुख्सत करने पर तैयार हूँ। आधा मुआवजा क्या होगा, ये तो मक्खियों की तादाद पर मुनहसर है, इमरान ने सर हिलाकर कहा। वैसे 1 घंटे में 1.5 दर्जन मक्खियां मारता हूँ और बस बस, कर्नल हाथ उठाकर बोला, मेरे पास फजूलियत के लिए वक्त नहीं। डैडी प्लीज, सूफिया ने जल्दी से कहा, क्या आपको तार का मजमून याद नहीं? कर्नल कुछ सोचने लगा, इसकी नजरें इमरान के चेहरे पर थी जो अहमकों की तरह बैठा पलके झपका रहा था। तुम ठीक कहती हो, कर्नल बोला और अब इसकी नजरें इमरान के चेहरे से हटकर इस बंदूक पर जम गईं। इसने आगे बढ़कर बंदूक उठा ली और फिर इसे गिलास से निकालते ही बुरी तरह भिपर गया। क्या बेहूदगी है वो अलग के बलशीखा, ये तो सचमुच एयरगन है। इमरान के इत्मीनान में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। इसने सर हिलाकर कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कर्नल का पारा इतना चढ़ा कि इसकी लड़की इसे धकेलती हुई कमरे के बाहर निकल गई। कर्नल सूफिया के अलावा और किसी को खातिर में ना लाता था, अगर इसके बजाय किसी दूसरे ने ये हरकत की होती तो वो इसका गला घोट देता। इनके जाते ही इमरान इस तरह मुस्कुराने लगा जैसे वो वाकई बड़ा खुशगवार रहा हो। थोड़ी देर बाद सूफिया वापस आई और इसने इससे दूसरे कमरे में चलने को कहा। इमरान खामोशी से उठकर इसके साथ हो लिया। सूफिया ने भी इसके अलावा और कोई बात नहीं की, शायद वो पहले से ही कमरे में इनके लिए तैयार रखा गया था। क्लॉक ने 1 बजाया और इमरान बिस्तर से उठ गया। दरवाजा खोलकर बाहर निकला, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन कोठी के किसी कमरे की भी रोशनी नहीं बुझाई गई थी। बरामदे में रुककर उसने आहट ली, फिर तीर की तरह कमरे की तरफ बढ़ा जहां कर्नल के खानदान वाले इकट्ठा थे। सूफिया के अलावा हर एक के आगे एक एक राइफल रखी हुई थी। अनवर और आरिफ शिद्दत से बोर नजर आ रहे थे। सूफिया की आंखें नींद की वजह से सुर्ख थी और कर्नल इस तरह सोफे पर अकड़ा बैठा था जैसे वो कोई बुत हो। इसकी पलके तक नहीं झपक रही थी। इमरान को देखकर इसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। क्या बात है, क्यों आए हो, इसने गरज कर पूछा। एक बात समझ में नहीं आ रही, इमरान ने कहा। क्या कर्नल के लहजे की सख्ती दूर नहीं हुई? अगर आप चंद नामालूम आदमियों से खाइफ हैं तो पुलिस को इसी की इतला क्यों नहीं देते? मैं जानता हूं कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्या वो लोग सचमुच आपके लिए नामालूम हैं? हाँ, बात समझ में नहीं आई। क्यों, सीधी सी बात है, अगर आप इन्हें जानते नहीं तो इनसे खाइफ होने की क्या वजह हो सकती है? कर्नल जवाब देने के बजाय इमरान को घूरता रहा। बैठ जाओ, इसने थोड़ी देर बाद कहा। इमरान बैठ गया। मैं इन्हें जानता हूँ, कर्नल बोला। तब फिर पुलिस जाहिर सी बात है। क्या तुम मुझे अहमक समझते हो, कर्नल बिगड़ कर बोला। जी हाँ, इमरान ने संजीदगी से सर हिला दिया। क्या कर्नल उछल कर खड़ा हो गया? बैठ जाए, इमरान ने लापरवाही से हाथ उठाकर कहा। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि आप लोग किसी वक्त भी इसकी गोलियों का निशाना बन सकते हैं। क्यों, वो किसी वक्त भी इस इमारत में दाखिल हो सकते हैं? नहीं दाखिल हो सकते, बाहर कई पहाड़ी पहरा दे रहे हैं। फिर इस तरह राइफलें सामने रख कर बैठने का क्या मतलब है, इमरान सर हिलाकर बोला। नहीं कर्नल साहब, अगर आप इमरान MSc PhD से कोई काम लेना चाहते हैं तो आपको इसे सारे हालात से आगाह करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपके बॉडीगार्ड के फरज अंजाम देने के लिए नहीं आया, डैडी बता दीजिए ना। ठीक ही तो है, सूफिया बोली। क्या तुम इस आदमी को काबिल एतमाद समझती हो? उनकी अभी उम्र ही क्या है, इमरान ने सूफिया की तरफ इशारा करके कहा। 60 60 साल की बुढ़िया भी मुझ पर एतमाद करती हैं। सूफिया बौखला कर इमरान को घूरने लगी। इसकी समझ में ही कुछ नहीं आया था। अनवर और आरिफ हंसने लगे। दांत बंद कर दो, कर्नल ने इन्हें डांटा और वो दोनों बुरा समूह बनाकर खामोश हो गए। आप मुझे इन आदमियों के मुताबिक बताएं, इमरान ने कहा। कर्नल कुछ देर खामोश रहा, फिर बड़बड़ाया। मैं नहीं जानता क्या बताऊं, क्या आपने इस दौरान में इनसे किसी को देखा है? नहीं, फिर शायद मैं पागल हो गया हूँ, इमरान ने कहा। कर्नल इसे घूरने लगा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं इन लोगों के निशान से वाकिफ हूँ। इसी निशान का मेरी कोठी में पाया जाना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि मैं खतरे में हूँ। ओ, इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में अपने होठ सकोड़े, फिर आहिस्ता से पूछा, वो निशान आपको कब मिला? आज से 4 दिन कबल। खूब, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? भाई, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं मालूम होता, कर्नल उपता कर बोला। तुम कल सुबह वापस जाओ। हो सकता है मैं भी रोगी हो जाऊं, आप मुझे दिखाइए लाना। कर्नल चुपचाप बैठा रहा। फिर इसने बेजारी के इजहार में बुरा सा मुंह बनाया और उठकर एक मेज की दराज खोल दी। इमरान इसे तवज्जो और दिलचस्पी से देख रहा था। कर्नल ने दराज से कोई चीज निकाली और फिर अपने सोफे पर वापस आ गया। इमरान ने इसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। अनवर और आरिफ ने मनीखेज नजरों से एक दूसरे की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे वो इमरान से किसी हिमाकत आमेज जुमले की तवक्का रखते हों। कर्नल ने वो चीज छोटी गोल मेज पर रख दी। ये एक 3 इंच लंबा लकड़ी का बंदर था। इमरान इसे मेज से उठाकर उल्टे पलटने लगा। वो इसे थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर इसी मेज पर रखकर कर्नल को घूरने लगा। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, इमरान बोला। पूछो, बोर मत करो। ठहरिए, इमरान हाथ उठाकर बोला, फिर सूफिया वगैरह की तरफ देखकर कहने लगा, हो सकता है आप इन लोगों के सामने मेरे सवालात के जवाब देना पसंद ना करें। उन यहाँ बोर मत करो, कर्नल उकताए हुए लहजे में बोला। खैर, मैंने एहतियातन यह ख्याल जाहिर किया था कि, इमरान ने लापरवाही से कहा। फिर कर्नल को घूरता हुआ बोला, क्या कभी आपका ताल्लुक मंशियात की नाजायज तजारत से भी रहा है? कर्नल बेसाख्ता उछल पड़ा। फिर वो इमरान की तरफ इस तरह घूरने लगा जैसे इसने से डंक मार दिया हो। फिर वो जल्दी से लड़कों की तरफ मुड़कर बोला, जाओ तुम लोग आराम करो। इसके भतीजों के चेहरे खिल उठे, लेकिन सूफिया इसके अंदाज से ऐसे मालूम हो रहा था जैसे वो नहीं जानना चाहती। तुम भी जाओ, कर्नल बेसब्री से हाथ हिलाकर बोला। क्या ये जरूरी है? सूफिया ने कहा। जाओ कर्नल, चीखा। वो तीनों कमरे से निकल गए। हाँ, तुमने क्या कहा था? कर्नल ने इमरान से कहा। इमरान ने फिर अपना जुमला दोहरा दिया। तो क्या तुम इसके मुताबिक कुछ जानते हो? कर्नल ने लकड़ी के बंदर की तरफ इशारा किया। बहुत कुछ, इमरान ने लापरवाही से कहा। तुम कैसे जानते हो? ये बताना बहुत मुश्किल है, इमरान मुस्कुरा कर बोला। लेकिन आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, मेरा ताल्लुक मंशियार की तिजारत से कभी नहीं रहा। तब फिर इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, आप इन लोगों के मुताबिक कुछ जानते हैं? वरना ये निशान इस कोठी में क्यों आया? खुदा की कसम, कर्नल मुस्तरिबाना अंदाज में अपना हाथ मलता हुआ बोला, तुम बहुत काम के आदमी मालूम होते हो। लेकिन मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अगर मैं कल वापस ना गया तो इस मुर्गी को कौन देखेगा जिसे मैं अंडों पर बिठाया हूँ? अच्छे लड़के मजाक नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। आप लियुका से खाइफ हैं? इमरान सर हिलाकर बोला। इस बार फिर कर्नल इसी तरह उछला जैसे इमरान ने डंक मार दिया हो। तुम कौन हो? कर्नल ने खौफजदा आवाज में कहा। अली इमरान, MSc PhD। क्या तुम्हें सचमुच कैप्टन फयाज ने भेजा है? और मैं कल सुबह वापस चला जाऊंगा। नामुमकिन नामुमकिन, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम लियुका के मुताले कैसे जानते हो? ये मैं नहीं बता सकता, इमरान ने कहा। लेकिन लियुका के मुताबिक मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। वो एक चाबी है, इसके नाम से मंशियात की नाजायज तजारत होती है। लेकिन इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल ठीक लड़के, तुम खतरनाक मालूम होते हो। मैं दुनिया का अहमक तरीन आदमी हूँ। बकवास है, लेकिन तुम कैसे जानते हो? कर्नल बड़बड़ाया। मगर कहीं तुम इसके आदमी ना हो, कर्नल की आवाज़ हलक में फंस गई। बेहतर है मैं कल सुबह। नहीं, कर्नल हाथ उठाकर चीखा। अच्छा, ये बताइए कि निशान आपके पास क्यों आया? इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानता, कर्नल बोला। शायद आप इस अहमक तरीन आदमी का इम्तिहान लेना चाहता है, इमरान ने संजीदगी से कहा। खैर तो सुनिए, लेओ का 2 साल पुराना नाम है। लड़के, तुमने ये सारी मालूमात कहाँ से बहिम पहुंचाई है? कर्नल इसे तारीफी नजर से देखता हुआ बोला। ये बात लेवका के गुरु वालों के अलावा और कोई नहीं जानता। तो मैं ही समझ लूं कि आपका ताल्लुक भी इसी के गुरु से रह चुका है? इमरान ने कहा। हरगिज नहीं, तुम गलत समझे। फिर ये निशान आपके पास कैसे पहुंचा? आखिर वो लोग आपसे किस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं? ओह, तुम ये भी जानते हो, कर्नल तकरीबन चीख कर बोला और फिर उठकर एक कमरे में टहलने लगा। इमरान के होठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। लड़के दफ्तर कर्नल टहलते टहलते रुक गया। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम वही आदमी हो जिसे कैप्टन फयाज ने भेजा है। आप बहुत परेशान हैं, इमरान हंस पड़ा। मेरे पास फयाज का खत मौजूद है। लेकिन अभी से आप इतना क्यों परेशान हैं? ये तो पहली वार्निंग है, बंदर के बाद सांप आएगा। अगर आपने इस दौरान में भी इसका मुतालबा पूरा ना किया तो फिर वो मुर्ग भेजेंगे और इसके दूसरे दिन आपका सफाया हो जाएगा। आखिर वो कौन सा मुतालबा है? कर्नल कुछ ना बोला। कमू हैरत से खुला हुआ था और आंखें इमरान के चेहरे पर थीं। लेकिन वो आखिरकार अपने होठों पर जबान फेर कर बोला, इतना कुछ जानने के बाद तुम अब तक कैसे जिंदा हो? मैं इस गोकाला की वजह से। संजीदगी संजीदगी, कर्नल ने बेसब्री से हाथ उठाया। मुझे फयाज का खत दिखाओ। इमरान ने जेब से खत निकालकर कर्नल की तरफ बढ़ा दिया। कर्नल काफी देर तक इस पर नजर जमाए रहा, फिर इमरान को वापस करता हुआ बोला, मैं नहीं समझ सकता कि तुम किस किस्म के आदमी हो। मैं हर किस्म का आदमी हूँ, फिलहाल आप मेरे मुताबिक कुछ ना सोचिए, इमरान ने कहा। जितनी जल्दी आप मुझे अपने बारे में बता देंगे इतना ही अच्छा होगा। कर्नल के चेहरे से हिचकिचाहट जाहिर हो रही थी, वो कुछ ना बोला। अच्छा ठहरिए, इमरान ने कुछ देर बाद कहा, लेओका के आदमी सिर्फ एक ही सूरत में इस किस्म की हरकतें करते हैं। वो ऐसा गिरोह है जो मंशियात की नाजायज तिजारत करता है। लेओका कौन है ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन हजार का सारा नफा इसी को पहुंचता है। कभी इसके बाद एजेंट बेईमानी पर आमादा हो जाते हैं, वो लेयोका के मुताबिक नहीं अदा करते। इस सूरत में इन्हें इस किस्म की वार्निंग मिलती है, पहली धमकी बंदर, दूसरी धमकी सांप और तीसरी धमकी मुर्ग। अगर आखिरी धमकी के बाद भी वो मुतालबात अदा नहीं करते तो इनका खात्मा कर दिया जाता है। तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं लेयोका का एजेंट हूँ, कर्नल खंकार कर बोला। ऐसी सूरत में और क्या समझ सकता हूँ। नहीं, ये गलत है। फिर मेरा ख्याल है कि मेरे पास लेयोका का सुराग है, कर्नल बड़बड़ाया। सुराग? वो किस तरह का? कुछ ऐसे कागजात हैं जो किसी तरह लेयोका के लिए मखदूज साबित हो सकते हैं। मखदूज होना और चीज है, लेकिन सुराग? इमरान नफी में सर हिला कर रह गया। ये मेरा अपना ख्याल है। आखिर आपने किस बिना पर यह राय कायम की? इमरान ने पूछा। ये बताना मुश्किल है, वैसे मैं इन कागजात में से कुछ को बिल्कुल ही नहीं समझ सका। लेकिन वो कागजात आपको मिले कहाँ से? बहुत ही हैरत अंगेज तरीके पर कर्नल सिंगार सुलगाता हुआ बोला, पिछली जंग अजीम के दौरान मैं हांगकांग में था, वहीं ये कागजात मेरे हाथ लगे। और ये हकीकत है कि जिससे मुझे कागजात मिले वो मुझे गलत समझा था। हुआ ये कि एक रात मैं हांगकांग के एक होटल में खाना खा रहा था कि एक दुबला पतला चीनी आकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा खौफजदा है। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। इसने जेब से एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर मेज के नीचे से मेरे घुटनों पर रख दिया और आहिस्ता से बोला, मैं खतरे में हूँ, इसे B14 पहुँचा देना। फिर कबल इसके कि मैं कुछ कहता वो तेज़ी से बाहर निकल गया। बात हैरत अंगेज थी, मैंने चुपचाप से लिफाफा जेब में डाल लिया। मैंने सोचा मुमकिन है वो चेनी मिलिट्री सेक्रेट सर्विस का आदमी रहा हो और कुछ अहम कागजात मेरी वसादत के किसी ऐसे एक्शन में पहुंचाना चाहता हो जिसका नाम B14 हो। मैं इस वक्त अपनी पूरी वर्दी में था। होटल से अपने कायमगाह पर वापस आने के बाद मैंने लिफाफा जेब से निकाला, वो सील किया हुआ था। मैंने इसे इसी हालत में रख दिया। दूसरे दिन मैंने B14 के मुताबिक पूछताछ शुरू की, लेकिन मिलिट्री की सीक्रेट सर्विस में इस नाम का कोई अदारा नहीं था। पूरे हांगकांग में B14 का कोई सुराग ना मिल सका। आखिर मैंने तंग आकर इस लिफाफे को खोल डाला। तो क्या इसमें लेयोका के मुताबिक पूरी रिपोर्ट थी? इमरान ने पूछा। नहीं, वो तो कुछ तजारती किस्म के कागजात हैं, लेकिन तजारत की नौयत साफ जाहिर होती है। लियोका का नाम इनमें कई जगह दोहराया गया है। कई कागजात चीनी और जापानी जबानों में भी हैं जिन्हें मैं समझ ना सका। फिर आपको लियोका की हिस्ट्री किस तरह मालूम हुई? ओ, वो तो फिर मैंने हांगकांग में लियोका के मुताबिक छानबीन की थी। मुझे सब कुछ मालूम हो गया था, लेकिन ये नामालूम हो सका कि लियोका कौन है और कहाँ है। इसके एजेंट आए दिन गिरफ्तार होते रहते हैं, लेकिन इनमें से आज तक कोई लियोका का पता ना बता सका। वैसे नाम 200 साल से जिंदा है। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ये लोग कब से आपके पीछे लगे हैं? आज की बात नहीं, कर्नल बुझा सुलगा सुलगा कर बोला। कागजात मिलने के 6 माह बाद ही से वो मेरे पीछे लग गए थे, लेकिन मैंने इन्हें वापस नहीं किए। कई बार वो चोरी छुपे मेरे कयामगाह में भी दाखिल हुए, लेकिन इन्हें कागजात की हवा भी ना लग सकी। अब इन्होंने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है, यानी मौत के निशान भेजने शुरू किए हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे। अच्छा, वो चीनी भी कभी दिखाई दिया था जिससे कागजात आपको मिले थे? कभी नहीं, वो कभी नहीं दिखाई पड़ा। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर इमरान बड़बड़ाने लगा, आप इसी वक्त तक जिंदा हैं जब तक कागजात आपके कब्जे में हैं। बिल्कुल ठीक, कर्नल चौंक कर बोला, तुम वाकई बहुत ज़हीन हो। यही वजह है कि मैं इन कागजात को वापस नहीं करना चाहता, वरना मुझे इससे ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। बस ये समझ लो कि मैंने एक सांप का सर पकड़ रखा है, अगर छोड़ता हूँ तो वो पलट कर यकीनन डस लेगा। क्या मैं इन कागजात को देख सकता हूँ? हरगिज नहीं, तुम मुझसे सांप की गिरफ्त ढीली करने को कह रहे हो, इमरान हंसने लगा। फिर इसने कहा, आपने कैप्टन फयाज का क्यों दरमियान में डाला? इसके फरिश्तों को भी असल वाकयात की इतला नहीं, वो तो हुरूफ ये जानता है कि मुझे कुछ आदमियों की तरफ से खतरा है, लेकिन मैं किसी वजह से बराह रास्त पुलिस को इस मामले में दखल देने की दावत नहीं दे सकता। तो आप मुझे भी ये सारी बातें ना बताते, इमरान ने कहा। बिल्कुल यही बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर शैतान की रूह मालूम होती है। इमरान की इमरान संजीदगी से सर हिलाकर बोला, बहरहाल आपने मुझे भैंसे और बॉडीगार्ड तल्ब फरमाया है। पार्ट वन यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। किताब चट्टानों में फायर का बकिया हिस्सा पार्ट टू में समाप्त फरमाइए।